نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وابن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي البر والمرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ اس وقت اللہ کی رحمت کا ایک عجیب و غریب سین ہے کہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک تمام عنایت فرمائی ہیں. پہلے تو اپنا کائنات کا جو خالق اور مالک ہے, جو رازق ہے, جس کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا, مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے قلوب کو بھی اور انسان کو بھی, اس کا پہلا انعام تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے پسندیدہ مہینہ عطا فرمایا جو محبوب مہینہ ہے اللہ تعالیٰ کا. دوسرا انعام ہم جیسے عاجزوں کو, گناہگاروں کو جو عطا فرمایا اس مہینے کے اندر, الحمدللہ ایک بہت ہی پسندیدہ وقت پر ہم سب کو, وہ مختصر ہیں لیکن جمع کر دیا. میں نے عرض کیا نا کہ سب مالک اور خالق ہی کر سکتا ہے, تو سمے اس نے ہی جمع کیا ہے, یہ دوسرا انعام ہے. اور تیسرا انعام جو اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں کہ سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل ذکر اللہ نصیب فرما رہے ہیں. اللہ کا یہ بہت ہی محبوب عمل ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو ذکر کرتے ہوئے دیکھے, خود نہ دیکھے بلکہ آسمان پہ جو فرشتے ہیں وہ بھی اس کو دیکھیں. تو یہ کتنا محبوب ہو کہ اللہ تعالیٰ کو, فرشتوں کو بھی اس میں شامل کرتا ہے کہ وہ بھی دیکھیں اس کو کہ دیکھو زمین کے اوپر بیٹھے لوگ میرا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. یہ میں تحمیدن یا کوئی ایسی بات نہیں کر رہا, یہ حقیقتاً بات کر رہا ہوں کہ واقعی ایسے ہی ہے معاملہ اللہ کے ذکر کے ساتھ. دیکھیں نا اکثر آپ ہم سنتے ہیں کہ بھائی ذرا اس مجلس کے بعد مٹھائی تقسیم ہوگی, حضرات تشریف رکھیں. سنتے ہیں نا لوگ بیٹھ جاتے ہیں, مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے, ماشاء اللہ مٹھائی آ رہی ہے, ڈبے آ رہے ہیں مٹھائی کے کھا رہے ہیں. یا سنتے ہیں بھائی حضرات تشریف رکھیں بھائی اس مجلس کے بعد کھانا تقسیم کیا جائے گا, ماشاء اللہ. جو نیچے وہ بھی سن کے اوپر آ جاتے نہیں آتے بھائی, کھانا مل رہا ہے. بلکہ ساتھ والے بھی بلاتے ہیں بھائی آ جاتے کھانا مل جاتا, تو کہتے ہیں برتن بھی ساتھ لے بھائی گھر والی بھی کھائیں گے. کتنا ذوق اور شوق ہے ہمیں اعلان ایک ہی ہوا نا, ابھی مولانا صاحب اعلان کرے تو میرے ذہن میں یہی بات جا رہی تھی, انہوں نے یہ اعلان کیا کہ بھائی نماز کے بعد اللہ کے ذکر کی مجلس ہوگی. تو انہوں نے یہاں کیا کہا تھا بڑا, ہاں تو اس فائدے کی جگہ حقیقت میں بیان کر دیتا ہوں کہ بھی اب اللہ کے ذکر کی مجلس ہوگی, اور ذکر کے بعد کیا ملے گا, جنت کا فروٹ ملے گا. کتنی بڑی بات, میں نہیں کہہ رہا تو اللہ نے کہا ہے, حدیث کہتی کیا ملے گا جنت کا. اس کے لیے ہم بیٹھ جائیں مٹھائی ملے گی تو فوراً بیٹھ جاتے ہیں, دال چاول ملے تو فوراً بیٹھ جاتے ہیں, لوگوں بلا لیتے ہیں. ادھر اعلان کیا جا رہا ہے حافظ صاحب کی زبان سے اعلان کیا گیا کہ بھائی ان کو کہو بیٹھو, ابھی جب یہ ختم ہوگی مجلس تو کیا ملے گا, اللہ جنت کے پھل اور فروٹ اور میوے ملیں گے. تو کتنے خوش قسمت ہم لوگوں کے کھانے کے لیے فوراً بیٹھ گئے, ایک بھی نہیں ہلا, بولے کہ دور سے کھانے آئے دعوت, किसकी दावत है? अल्लाह ताला की दावत है। बहुत बड़ी मजलिस, कितनी अजीब मजलिस है ये, अल्लाह के जिक्र की आप सोचें, कितनी अजीब मजलिस है कि जहां ये कायम हो जाए कोई तश्खीश है ही नहीं इसकी। जंगल में हो जाए, दरिया के किनारे हो जाए, बाजार में हो जाए, मस्जिद में हो जाए, घर में हो जाए, दुकान पे हो जाए, बिस्तर पे हो जाए, बिस्तर के किनारे पे हो जाए, कहीं भी हो जाए, अल्लाह ताला कहते हैं जहां भी मेरी मजलिस होती है जिक्र की, वही जन्नत का टुकड़ा बन जाता है। क्या हम ना नजर आए किसी को? क्या तो हदीसें बता रही कि इसी जबरदस्त मजलिस है अल्लाह जिक्र की कि सोचे आदमी जरा, वो जगह चेंज होती है, मामूली जगह नहीं बनती, कोई फला कोई कीमती चीज बन गई, कोई महल बन गया, या नहीं, डायरेक्ट कहाँ जाती है? अल्लाह तक जाती है। क्या बन गया भाई? जन्नत की, जन्नत जन्नत नहीं बनी, बल्कि इसमें एक ऐसी हदीस है, जन्नत नहीं बल्कि जन्नत का बाग बन गया। खास कहा है उस बात को, खास जैसे आप कहें हम लंदन जा रहे हैं तो एक चीज हो गई लंदन जा रहे हैं, तो हम लंदन म्यूजियम देखने जा रहे हैं तो एक खास अजीब ट्रिप हो जाता है ना, उसमें खास चीज है म्यूजियम के अंदर, लंदन आप फला टावर देखने जा रहे हैं तो एक खास चीज नजर आती है लंदन में, ये चीज है, तो अल्लाह ने ये नहीं कि जन्नत बन जाती है, लोगों जन्नत का बाग बन जाता है। और सुभान तशरीफ फरमाते हैं, ये क्या चीज है अल्लाह के जिक्र की मजलिस, ये बाग बन जाता है, और जो उस मजलिस में बैठ जाते हैं अल्लाह हु अकबर, तो फिर वो बैठते नहीं बाग में, बल्कि बाग में सैर भी कराता हूँ मैं, इसके अलावा सैर कराता हूँ, सैर कराते कराते यही कहता हूँ कि जो भी चीज तुम्हें मेवा पसंद आ जाए, इजाजत है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस बाग के अंदर, तोड़ो और खाते जाओ। मेरे हजरत रहमतुल्लाह फरमाते थे कि खूब रज रज के खाओ, फिर खूब खाओ, अल्लाह ने फल दे रहा है इस वक्त, फ्रूट दे रहा है जन्नत के, तो ये कैफियत पैदा कर लेनी चाहिए हम लोगों को, मरे मरे दिल के साथ ना आए, सुस्त दिल के साथ ना आए, मुर्दा दिल के साथ ना आए, किसी मजबूरी के साथ ना आए, अल्लाह की दी हुई दावत है, इसके अहतमाम पर अल्लाह ताला कैसे खान इंसान फरिश्ते लेके खड़े होते होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह फरिश्ते दरवाजे पे खड़े होते होंगे लेकर, जिस तरह होते ना कभी निकाह होता है ना, छुआरे बांटते हैं, चीजें बांटते हैं, कसम खाने को दिल कर रहा है मेरा, क्योंकि बिल्कुल मुशाहिदा ही है कि इसमें जो हदीस से सुन ले आदमी मुशाहिदा ही होते हैं, इसमें आदमी कसम खा सकता है कि बिल्कुल ऐसी है कि भाई ये वाकत हो रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी कैसा रोजा खोल के जाता है रोजगार, अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी से रोजा खोल रहा है, कोई पकौड़ों से खोल रहा है, किसी से खोल रहा है, और हम किससे रोजा खोलेंगे? जन्नत की खजूरों से अल्हम्दुलिल्लाह। क्या भाई देगी, ये खजूरें तकसीम की जाती हैं, देखने में दुनिया की लगती हूँ लेकिन ऊपर से आती हूँ, ये कोई पता नहीं। तो भाई आया करें जिक्र में, और फिर ये रमज़ान के तो खास खास ही कोई अल्लाह की तरफ से खसूस आती हुई चीज़ें आम दिनों जो मजलिस में आती हैं वो तो आम होगी, लेकिन ये रमज़ान की जो तोहफे आते होंगे अल्लाह की तरफ से जिक्र करने वालों के लिए, और कितने खुशकस्मत हैं यार, मैं भी आपकी वजह से खुशकस्मत हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह रात दिन यही काम कर रहे हैं जो लोगों को पसंद है। ये बुजुर्गान दीन ने यही कहा, इसकी तैयारी शायद मैंने पहले भी अर्ज किया था आपसे कि इस महीने में गलती ना करें, कभी भी गलती नहीं करनी चाहिए, क्या कि सुनने की गलती ना करें बल्कि करने का काम करें, ये जो है ना करने वाला महीना है, ये कानों वाला नहीं है, ये बल्कि क्या है अमल करने वाला महीना है, इसमें अमल करें जितना भी हो सकता है, खाली हो ना इंसान, और सबसे बेहतरीन अमल जो कर सकता है वो अल्लाह का जिक्र करने वाला कर सकता है, आला दर्जे का, ऊंचा दर्जे। और दाऊद अलैहिस्सलाम की दुआ मुझे याद आ रही है, सुभान अल्लाह, कितने बड़े नबी थे, देखें दाऊद अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला अगर तू देखे कि मैं जिक्र करने वालों की मजलिस से उठकर छोड़कर किसी दूसरी मस्जिद में गाफिल मस्जिद में जा रहा हूं तो मेरे पांव तोड़ देना, अल्लाह का नबी फरमा रहे हैं। तो कितनी आप ये देखें रगबत और मोहब्बत रखती है अल्लाह के जिक्र के अंदर कि किस कदर अल्लाह के चाहने वालों को, अल्लाह के महबूब को एक लम्हा भी ये मस्जिद को छोड़ देना पसंद नहीं होता इस चीज का। देखिए अब क्या होगी इसकी हैसियत, वो तो आरफिन थे ना अल्लाह वाले, नबी तो नबी होता है ना, उसको पता होता है कि कितनी कीमती चीज़ है, कितनी अहम चीज़ है, कि अल्लाह ताला तो कभी हो ही नहीं सकता मैं ऐसा काम कर लूँ, ये गलती तेरी नबी से नहीं हो सकती कि जिक्र की मजलिस चल रही हो या जिक्र की मजलिस हो, उस मजलिस के ऊपर किसी और को प्रेफरेंस दे दूँ, किसी और काम को उस पर तरजीह दे दूँ, किसी और काम को उसको उठा के रख दूँ, ये कैसे हो सकता है? समझ आ रही बात? देख लें आप, नहीं जी हम इस वजह से जिक्र में नहीं आ सके, नहीं जी फला काम की वजह से नहीं आ सके, देखें क्या है? अजीब अजीब किस्म की देखें दुआ मिलती है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की, कि इतना नुकसान है, इतना नुकसान इंसान को तो गई, क्या इंसान कि प्रेफरेंस दे दे अल्लाह के जिक्र पर, दुनिया के कामों को, दुनिया की चीज़ों को, दुनिया को छोड़ रहे, और फिर खास तौर पर रमज़ान में, वो तो बहुत ही बदकिस्मत इंसान, सोच भी नहीं सकता कि इतनी बड़ी चीज, इतना बड़ा अल्लाह का इनाम हो, इंसान उसको छोड़ दे। एक आरफीन का मुझे, एक और आरिफ का, ये तो नबी थे ना, आरिफ बिल्ला जो होते हैं, जो अल्लाह को पहचान जाते हैं, जो मार्फत के समंदरों के अंदर गोते मारते हैं, वहाँ से मोती निकालते हैं, उनको कहा जाता है आरिफ, आरिफ बिल्ला। अक्सर औलिया अल्लाह के नाम के साथ लिखा होता है, वाकई वो आरिफ बिल्ला होते हैं। हमारे शेख जो आपके दादा शेख हैं, मेरे शेख जिनका मैं गुलाम हूँ, तो उनको भी खिताब यही दिया गया था बुजुर्गों की तरफ से, आरिफ बिल्ला, फजल कुरैशी रहमतुल्लाह से बुजुर्गों ने उनको खिताब दिया था, आरिफ बिल्ला का खिताब दिया था। तो मुझे एक वाकई याद आता है, हजरत के दरवेश थे, मैं खानकाह में जाता था, तो पुराने दरवेश थे, वो शफकत फरमाते थे मेरे पर। होता यह है कि खानकाहों का माहौल होता है, एक बातें आपकी असलाह भी कर दूँ उसमें, कि इसमें नए भी आते हैं, पुराने भी आते हैं, तो ये खानकाहों का माहौल बता रहा हूँ, ये होता है कि वहाँ खुद गर्जी नहीं चलती। जब देखते ना कोई नया आदमी आया है, तो उस नए आदमी बड़ा शौक होता है कि मैं हजरत की खिदमत करूँ, हजरत में जूता उठाऊँ, हजरत दरवाजे खोलूँ, हजरत ये करूँ। तो पुराने लोगों को चाहिए कि जब कोई नया आदमी आए तो हर चीज़ में उसको आगे करें। जब मैं पहले पहले गया खानकाह में हजरत की, तो इतने बड़े बड़े अल्लाह के बुजुर्ग नेक इंसान मुझे आगे कर रहे हैं, नहीं नहीं हजरत आप बैठेंगे, नहीं नहीं आप हजरत के पास बैठेंगे, आप ये करेंगे, आप वहाँ बैठेंगे, और वो आप बिल्कुल पीछे, हर नए आदमी को था, तो आदमी मैं खुद महसूस करता, ये तो भाई बड़ी हौसला अफजाई होती है इंसान की नए आदमी की, बजाय ऐसे उनके साथ कंपटीशन किया जाए, कोई धक्का मारा जाए, मैंने आगे बैठना है, मैं ये खानकाह के अदब बता रहा हूँ आपको, निश्त कैसी होनी चाहिए, बैठना कैसे चाहिए, शेख की गुफ्तगू कैसे सुनना चाहिए, ये सारी जब चीज़ें हम करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह नूरा नूर हो जाता है इंसान। सिर्फ जिक्र ही चीज़ नहीं है, तो खानकाह तो एक अजीब और गरीब चीज़ है भी, वहाँ से झोंका भी लग जाए ना आदमी का, तो वहाँ काम बन जाता है। जी मैं जी एक मुझे वाक़ा इन बुजुर्गों का मुझे याद आ गया, और एक और भी वाक़ा सुना देता हूँ, हमारे अपने बुजुर्गों का वाक़ा। ये बड़ी चीज़ें होती हैं अल्लाह वालों की मजलिसें जो होती हैं ना, लेकिन एक जहन में ख्याल रखनी चाहिए कि मैं अल्लाह वाला नहीं हूँ, मैं आपको ट्रेन कर रहा हूँ कि अगर कोई अल्लाह वाला मिल जाए तो वहाँ आपने ऐसे करना है, और इस ट्रेनिंग का सवाब अल्लाह पाक से मैं लूँगा। कभी ये ना समझ लेंगे अस्तग़फिरुल्लाह 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 कि मेरे जहन और गुमान के अंदर भी ये बात कही गई हो, नाजायज़ बिल्कुल अजीब किस्म का, मैं तो गंदा गुनाहगार इंसान हूँ, क्योंकि हजरत ने मुझे हुक्म फरमाया है कि भाई तुम जाकर जिक्र कराओ और तुमने कोई बात करनी है। वो कहते मुझे किताब को भी रिकमेंड किया था आज से, मैं 60 साल पहले की बात कर रहा हूँ, वो किताब लो वहाँ जाके तुमने किताब बतानी है, तुमने जुमा पढ़ाना है, और तुमने जाके वो जो है लोगों को जिक्र कराना है। तो उस ड्यूटी को मैं अदा कर रहा हूँ, लेकिन कभी भी जब मैं अल्लाह वालों की बात करता हूँ ना, तो बिल्कुल मेरी तरफ ना देखने लगे ये अल्लाह वाले हैं। मेरा बहुत भाई घटे किस्म का आदमी हूँ, तो आप मुझे जूते उठाने का मौका दिया करें, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। तो इसलिए क्योंकि सोबत हजरत की लगी है, शायद आपको नजर आने लगा हूँ अल्लाह वाला, उन्होंने सोबत का असर होगा थोड़ा बहुत, जो आपके दिलों में इज्जत चली गई ना, तो मेरी इज्जत कहाँ, मैं तो एक बेकार आदमी बिल्कुल। तो होता है ऐसे कि एक अरे बिल्ला कबीर में बहुत पुराने बुजुर्ग हैं, जुल्नैन उनका नाम था, मिस्री रहमतुल्लाह अलैह, शायद पहले भी उनके वाक़ात में मैंने सुनाया हूँ आपको, बहुत ही अपने वक्त के बहुत बड़े बुजुर्ग और अल्लाह वाले इंसान थे, और जुल्नैन उनका नाम था। उस तरह नाम हुआ कि अल्लाह ताला ने उनसे करामत ज़ाहिर फरमाई, अल्लाह वालों से अल्लाह ताला करामत ज़ाहिर फरमाते हैं, करामत बरहक है, हक है बिल्कुल। तो वो भी इस वजह से होती है कि वो अल्लाह वालों के इख्तियार में नहीं होती करामत, बल्कि अल्लाह सुबहान तआला बाज़ औक़ात ऐसी कौम से वास्ता पड़ जाता है उनको तबलीग करने में, उनको समझाने में, कि उनके दिमाग ही नहीं हिलते। ना दिल खुलता है, ना दिमाग खुलते हैं, ना आँख खुलती हैं, वो ना बस बस जहाँ जड़े होते हैं, फिर अल्लाह ताला से फिर अपने वली को जो है वो करामत पेश फरमा देते हैं। ताकि वो कलामों से उन पर असर पड़ता है, तो फिर उनकी तरफ से दीन को बुलाते हैं, अपनी तरफ नहीं बुलाते, किधर बुलाते हैं, दीन को बुलाते हैं। इसलिए बुजुर्गों को हमने अक्सर देखा है, मैंने अपने हजरत से कभी भी हमने नहीं सुना, शायद एक आध बात जो कैच कर ली हो तो वो तो आ गई किताबों के अंदर, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने किसी किस्म की किसी करामत को जाहिर नहीं किया। आज तक हमने सुना कि मैं जी मेरे साथ हुआ, मैंने ये ख्वाब देखा, फलां हुआ, फलां बुजुर्ग है, और फलां ज्यारत हुई है, इस तरह ज्यारत हुई, जहाँ तक मेरा यकीन है तो बामुशाहदा ज्यारत करते होंगे। मैंने कहा आरिफ बिल्ला, तो मुझे वाकई पर अपने हस्त का सुना दूँ आपके, आरिफ बिल्ला होता है क्या है। तो वो दरवेश थे, इंतकाल करके अल्लाह के करम पर रहमत फरमाए, खास खादिम थे हजरत के। तो जिसने बताया ये बात जहाँ से निकली थी, मेरा हौसला अफजाई करते थे, तो बहुत हौसला अफजाई, कभी एकदम मुझे अपने घर ले गए, शुरू में गया तो चटाई बिछी थी, रात को एक दिया जल रहा था, उनकी बूढ़ी उनकी भी अहलियत कहते खाना बनाओ, हजरत के बहुत चाहने वाले मुरीद आए, तो हमें इनकी जूतियाँ उठानी चाहिए। ये बता रहा हूँ आपको सीनियर लोगों की बात है, क्या अदब होता है खानकाह के अंदर। खुदा आज मैं शिंदा होता हूँ सुबह से, किस तरह मुझे चटपाई पर बिठाया, खुद चटाई पर बैठे, उसी वक्त उनकी बीवी ने बनाया भुजिया शुजिया बनाई बेचारी दाल सी, और तंदूर से जल्दी रोटी मंगाई, गरीब आदमी थे वो खाए, तो वो मेरे साथ चलते आ रहे थे। तो मैंने उनसे एक सवाल कर दिया, क्योंकि बेचारे नए आदमी को तो पता नहीं उल्टे सीधे सवाल करता है। मैं ये हजरत को जो आरिफ बिल्ला आप कहते हैं, ये आरिफ बिल्ला क्या होता है? तो वहाँ से नहीं कहते, ये सवाल मेरे जहन में आए थे। मैं हजरत की मजलिस में बैठा था शुरू शुरू के वक्त, तो मैंने कहा हजरत को आरिफ बिल्ला कहा जाता है, आरिफ बिल्ला होता क्या है? एकदम मुझ पर गनूदी तारीख हुई, मैं बताया ना करामत देते हैं अल्लाह पाक, एकदम गनूदी की तारीख हुई, तो गनी तारीख हुई, तो यही हजरत साहब मैंने देखा कि एक नूर का समा पैदा हुआ है, और हजरत साहब जो है इतने हसीन जमील बड़े लंबे चौड़े कद के साथ खड़े हैं, और खड़ों का मुझे तबशार करके देख खा करके जोर से थूका, जब थूका तो जमीन आसमान सारा नूर नूर हो गया। तो कहते ये है आरिफ बिल्ला, इसको कहते हैं कि जो अल्लाह को पहचान जाता है, अल्लाह उसकी हर चीज नूरानी कर देता है उसकी, इसको आरिफ बिल्ला। भाई ये तस्की की मजलिस है तो इसमें ऐसी बातें चलती हैं, तो इसमें कोई फतवा ना लगा देना मेरे पर कि हदीस से साबित करो ये चीज़। तो भाई ये साबित बाबित तो मैं नहीं कर सकता, बुजुर्गों की सोबत में सुनी बातें तो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तो वो हज़रत जो रहमतुल्लाह थे, उनका मैं बात आपसे कर रहा था इस मजलिस के हवाले से, अल्लाह के जिक्र की कितनी बड़ी मजलिस होती है। एक तो इतने बड़े नबी का मैंने आपके सामने दुआ पेश की कि उसकी असलियत को जाहिर किया अल्लाह के जिक्र की मजलिस को, एक आरिफ बिल्ला की मैं आपको कौल बताता हूँ। तो वो उनका भी एक दफ़ा कलाम ज़ाहिर हुई, पहले उनकी बता दूँ कितने बड़े बुजुर्ग थे, कश्ती में सवार थे, इसी तरह जा रहे थे, तो कुछ लोग भी बैठे थे उसमें, किसी का कोई कीमती मोती था गुम हो गया, उसने शुरू में चाहे बिना मोती गुम हो गया, मोती गुम हो गया, सब कहने किसी ने चुराया किसी ने चुराया, तो वो बेचारे फकीरान लिबास में थे, इतना फटा फटा पुराना लिबास था उनके, बैठे थे, उनका ये है ये फकीर इसने चुराया, उसने कहा मैंने नहीं चुराया, मैं क्यों चुराऊंगा, कहते नहीं तुम नहीं चुराए, सब उनके पीछे पड़ गए हमारा मोती दो। उन्होंने अल्लाह की तरफ इशारा किया, अल्लाह ताला तो खबीर बसीर है, मुझ पर इल्ज़ाम दे रहे हैं, तो बता मेरी तरफ से कि मैंने क्या मोती चुराया इनका। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला की रहमत जोशी में जो मजलिस मछलियाँ थी ना समंदर की, 100 मछलियाँ उसी मोती को ले गए ऊपर जाहिर हो गई, तो उन्होंने क्या अपना मोती उठा लिया, इसमें जो तुम्हारा मोती था। तो ये बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे बहुत बड़े, उनका कौल है कि वो इतना खूबसूरत है, बल्कि खानकाह रंग में और बात उनकी पेश करता चलूँ मैं आपसे, कि अल्लाह वालों की मजलिस जिसमें मैंने अर्ज किया था खाली नहीं जाता, अल्लाह वाले की मजलिस से खाली नहीं जाता, तो कैसे जाएगा? इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ, बहुत छोटी सी। आप किसी इत्र की दुकान पे गए, अंदर घुसे, इत्र को तलाश कर रहे हैं, इत्र की बोतलें खुली भी होती हैं, आप बाहर निकलेंगे तो आपके अंदर खुशबू जरूर आएगी, बस थोड़ी है, हल्की है, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको खुशबू लग जाएगी। तो बिल्कुल ये अल्लाह वालों की मिसाल है कि अल्लाह वालों की दुकानों से खानकाहों से विलायत मिलती है। जी बात करने लगा उनसे, क्या मिलती है? विलायत, अल्लाह की दोस्ती मिलती है। तो जो उसकी खानकाह से चक्कर मारा है तो चाहे कितनी कम दर्जे की विलायत हो लेकिन वो लेके चला ही जाता है। ये मैं आपको सही बता रहा हूँ, खाली नहीं जाएगा, उसके दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत की चींट पड़ जाती है। ऋषि एक दफा चक्कर मारे, हर गंगी रहमतुल्लाह का वाक़ा मैं आपको सुनाता हूँ, शायद पहले भी सुनाया हूँ। फारिग हुए थे इलम से और बहुत ज़हीन तालिब इलम थे, ज़ाहिर तो ऐसा आदमी ऐसा बनना होता तो ऐसे ही होता है, तो उनकी जाने की मिसाल नहीं थी। फारिग हुए थे जनाब, बस वो जिस तरह नया नया जो आलिम बना होता है उसमें जोश, और फिर थोड़ा अकल भी हो जहन भी हो तो जोश मार रहा होता है, इससे मुनाजर कर लूँ, इस पर फतवा दे दो, इसको गलत साबित कर दूँ, इसके लिए मैं हदीस निकालूँ, इसके लिए ये करूँ। एक नए नए आदमी में आलू में जोश होता है, इसलिए थानवी रहमत फरमाया कि खबरदार नए आलू कभी मेम्बर पर खड़ा ना करो जब तक कि पूरी अपनी असलाह ना करा ले किसी अल्लाह वाले के साथ, असलाह करा ले तो फिर आके खिताबत पर जाए या इमामत पर जाए। लेकिन ये सब कानून ख़त्म हो गए हमारे, कहाँ कानून रहे, तो जब भी अफरत तफरी मची हुई है, जिसको चाहो काफिर कह दो, किसको चाहो बिद्दती कह दो, किसी को चाहो ना कोई बुजुर्गी का पता ना कुछ पता। लेकिन वो ज़माना ऐसा नहीं था, लेकिन हालात तो वही थे, वो जब आलिम बने तो बस जोश था। तीन बुजुर्ग थे उस वक्त जो एक ही जगह बैठते थे, क्या ज़माना हुआ। हाफिज जामिन रहमतुल्लाह हज़रत थानी के नहीं दूसरे थे, अहमद थानी रहमतुल्लाह, हाजी साहब रहमतुल्लाह, हाजी अब्दुल्ला माकिब के मजार है, अल्लाह वालों की बातें सुन के नहीं है ना, गौर से सुनो। तीन बुजुर्ग एक साथ, क्या जमाना होगा मुझे बताएं, जिसको जमाना आज तक याद करता है। उनमें से एक बुजुर्ग थे अहमद थानी रहमतुल्लाह, उन्होंने कोई रिसाला लिखा होगा कुछ आपको होगा, तो वो हजरत गंभीर रहमतुल्लाह के हाथ पड़ा तो अश्काल निकाल लिए, नया इलम था ना और इसलाह हुई नहीं थी, अश्काल बहुत सुना, पकड़े कागज और जोश के साथ कि ये कैसे साबित हुआ और फलां कैसे हो सकता है, कागज पड़े वो चले जाना उस खानकाह की तरफ, जहाँ तीन अल्लाह के इतने बड़े बड़े मौजूद थे, चले जाने। इत्तेफाक अच्छा ही अच्छा है, वो अल्लाह की तरफ से होते हैं सारी बातें। तो वो पहली स्टेज पे उनको हाफिज जामिन साहब मिल गए, तो वो बड़े अजीब वगैरह बुजुर्ग शुमार किया जाता है उनका, बड़ा अजीब, यानी हंसते हंसते इंसान को वली बना देते थे, उनकी शान भी अजीब है, उनकी हिस्ट्री पढ़े ना आप, बेन था हंसमुख हंसने वाले और अजीब मजाज के आदमी थे, मजाज समझा उनको, कहते हैं कि बेखूब रौनक वाले आदमी थे, पता नहीं चलता था इंसान को हंसी हंसी में उनको अल्लाह से मिला देते थे इंसान, तो इस वक्त पहले उनसे मुलाकात हुई। साहबजादे किधर चले, नए तो फारिग थे, कहते जी मैं ये उन्होंने लिखा है ये, तो मैं इस मामले पूछना चाहता हूँ कि ये तो साबित नहीं हो रही बातें, ये कैसे आ गई, इसमें ये शिकवा है, इसमें ये है, तो फलाए उनका बरखुरदार, क्या कर रहे हो तुम, किस तरफ चले हो, ये सारी चीज़ें बहुत बुरी हैं, अल्लाह वालों के बुजुर्गों के साथ इस तरह बातें नहीं करते, ये ऐसे कदम नहीं उठाते, तुम ऐसे करना नहीं चाहिए, ये बहुत बुरी बात है। उन्होंने समझाया अच्छी बात नहीं ये तुम कर रहे हो, मैं तुम्हें नसीहत करूँगा कि ये काम करने ना जाओ, अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ चलो तुम्हें जाना है, लेकिन कितना काम बनाया होता है हंसते हंसते, तो उससे आगे जो कमरा है ना हाजी साहब का, उधर चले जाओ, वो तुम्हें बताएंगे सब बात, हाँ मुझे बताएं, हाजी साहब के पास जाता हूँ मैं। वो हाजी साहब के पास पहुँच गई, मैंने कहा ना अल्लाह वाले के पास पहुँचना, बस पहुँच जाए आदमी एक दफा, खाली नहीं जाता चाहे किस नीयत से है, विलायत लेके ही जाते हैं अल्लाह के फजल से, विलायत भी तो कई दर्जे हैं, दोस्ती लेके ही जाता है अल्लाह ताला, कभी खाली नहीं जाएगा। तो वो जहाँ अपनी किताब में दवाई खाते हैं हाजी साहब ने बिठाया, कितनी दिन के लिए गए थे, ना कोई कपड़ा था ना चाकिर था कुछ नहीं, 40 दिन हो गए वहाँ से निकल ही नहीं सके, कितने दिन, बड़ी बात होती है। अगर आप लोग एतकाफ में बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो आज से आपकी पैकिंग शुरू हो गई, ये कमीज रख दो जी, फला चीज़ रख दो जी, फला साफा रख दो जी, तो फला बनियान रख दो, अभी से काम शुरू हो गया कपड़ों का। तो वहाँ 40 दिन खानकाह में रहे, कपड़े भी पास नहीं, कुछ भी पास नहीं, पीछे भी बच्चे सब कुछ याद नहीं, 40 दिन के बाद निकल रहे हैं, और तब भी निकाला गया कि भाई अब तुम फारिग हो चुके हैं हमारी तरफ से, तुम्हें वो बना दिए तुम पहले नहीं थे। सुभान अल्लाह, चूंकि गर्दन है और जनाब कपड़े मैले हैं, हालात अजीब है, जहर कुछ है और दिल कुछ हो गया, दुनिया ही बदल गई। उसके बाद उनको पता चला कि आलिम था लेकिन आरिफ अब बना। तो ये है कि अगर कोई गुजर जाए अल्लाह वाले की किसी मस्जिद से भी, تو رنگ لے کے جاتا ہے اللہ کے فضل سے. تو وہ جناب نون کی بات کر رہا ہوں, پھر اصل بات کروں گا آپ سے. کتنے بڑے بزرگ تھے, پائے کے بزرگ تھے, کتنے بڑے جناب بیٹھے تھے اپنے مسجد میں اسی طرح. تو وقت کا جو بادشاہ تھا شہزادہ, وہ اتفاق سے بس اس کی قسمت سے اچھی تھی. جناب لوگوں کی قسمتیں اچھی ہوتی ہیں نا, وہ اللہ والوں کے جھوگی میں گھس جاتے ہیں, یہ پاس سے گزر جاتے ہیں, یہ سلام کر لیتے ہیں. ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ سلام کرنے والا بھی پکڑا گیا بیچارا, جس نے ہاتھ ملا دیے نا وہ بھی مارا گیا, ہنس کے ملا وہ بھی مارا گیا بیچارا. وہ تو بنا نا اللہ کا دوست. تو جناب وہ پاس سے گزرا تو انہیں بڑا پیارا فکر ہے جملہ کس دیا حضرت, کہنے لگے سننے والی بات ہے یہ عجیب فکر ہے, دل میں اتر گیا سن کے. کہنے لگے کہ کسی کمزور کا طاقتور کے ساتھ جنگ لگنا, جنگ کرنا, یہ بھی کوئی اس سے بھی زیادہ کوئی احمقانہ فیل ہو سکتا ہے؟ مختصر بات تھی کہ کسی کمزور کا طاقتور کے ساتھ جنگ کرنا کہ اس سے زیادہ کوئی احمقانہ یعنی فلش کوئی فیل ہو سکتا ہے؟ اب ہم سب ہم دیکھیں کہ کہاں اللہ کی ذات اور ہم کہاں اس سے جنگ کر رہے ہیں, اور واقعی اللہ نے اعلان کیا اس کا, ایک 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 ٹاپک کو اٹھایا اسے. ہر گناہ ایسا ہے انسان کے لیے, جب وہ گناہ کرتا ہے تو کس سے جنگ کر رہا ہے؟ کیسے عارف اللہ نے ایک فکر رکھا خدا کی. میں کہتا ہوں اس سے زندگی چینج ہوتی ہے آدمی کی, کہ کہاں میں اور کہاں اس کی ذات, کہاں وہ کہہ رہا ہے کہ تو یہ کام نہ کر اور میں کہتا ہوں میں نے وہ کام کرنا ہے, یہ جنگ نہیں ہے. اللہ نے اعلان کیا ہے قرآن کے اندر کہ جو سود کھائے گا وہ کس کے ساتھ جنگ کرتا ہے؟ میرے ساتھ. جو میری بات نہیں, یہ سود ایک چیز ہے لیکن ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اسے ایک مثال دے دی اللہ پاک نے, قرآن کا انداز ہے, ایک مثال سے سمجھا دی ہے کہ جو باتیں میں نے کی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے کیا ہو جاؤ, تیار ہو جاؤ. یہ دونوں چیزیں آ گئیں, سنت ہو نبی کی قسم کی جس کا سرکار میں حکم فرما رہے ہیں اور ہم ادا نہیں کر رہے, تو ہم کیا کر رہے ہیں حقیقت میں؟ مجھے بولو تر جنگ کر رہے ہو. کس سے جنگ کر رہے ہیں؟ اللہ کو. جب انسان کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو اس کو کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ سے جنگ کر رہا ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ فکر حقائق اس بادشاہ کو جو لکھ کیا اس کا حال ہوتا ہے بادشاہ کا, جو محلوں کے اندر عورتیں مال جو کچھ سب کچھ بادشاہ کے اندر, تو پرانے زمانے کے بادشاہ ہیرو جواہرات کسی چیز کی کمی ہوتی ہے, لیکن ایک فکر سمجھداری کے لیے بڑا کافی ہوتا ہے کہ تو جنگ کس سے کر رہا ہے, تو کتنا ہی طاقتور بادشاہ ہے یا کتنی ہی طاقتور تو دنیا کے اندر ہو جائے, لیکن اس سے بڑا نہیں ہو سکتا جو خالق مالک ہے. کوئی نہیں ہو سکتا, کوئی نہیں ہو سکتا. آج بھی دنیا میں آپ دیکھیں جو نافرمان ہوگا اللہ کا, اللہ کے احکامات کو توڑ رہا ہوگا, وہ کس سے جنگ کر رہا ہوگا؟ دنیا والوں سے نہیں, بلکہ کس سے کر رہا ہے؟ تب تو کریم سے کر رہا ہے. تو کیوں نہیں ابھی انتقام لے رہا اللہ تعالیٰ؟ اس نے کہہ دیا ہے جنگ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر بھی تو میرا بندہ ہے, میں تجھے چانس دیتا ہوں کہ شاید کسی لمحے بھی تو میرے کسی چیز سے بھی مجھ تک پہنچ جائے, میرے پھول کو دیکھ کے پہنچ جائے, آبشاروں کو دیکھ کے پہنچ جائے, درختوں کو دیکھ کے پہنچ جائے, ساری کائنات کیونکہ مجھے میری طرف دعوت دے رہی ہے. ہو سکتا ہے تیرے شعور جاگ جائے اور تو مجھ تک پہنچ جائے تو میں تجھے چانس دیتا ہوں, لیکن جنگ ہے تیرے ساتھ, مقابلہ کوئی نہیں تیرے ساتھ کرے گا, مقابلہ میں نے تیرے ساتھ کرنا ہے. اس میں ولی اللہ بڑا قول ہے کہ جب کب تک کوئی تنگ کرے نا آپ کو, کسی ولی کو کوئی تنگ کرتا ہے نا تو ولی اللہ خاموش ہو جاتے ہیں, وہ کچھ نہیں کہتے. کیوں؟ کہ مجھے ضرورت ہی نہیں کچھ کہنے کی. حضرت علی کے قول ملتے ہیں ایسے کہ مجھے کیا ضرورت ہے میں ایسے کچھ کروں جب میری طرف سے لڑنے والا میرا رب ہے. میں انتقام لوں گا تو تھوڑا انتقام ہوگا, وہ تو کچھ ہوگا ہی نہیں انتقام. میں اس کی گردن پکڑ لوں گا, میں اسے بات کروں گا, میں اسے آرگومنٹ کروں گا, یا اس کو تھپڑ مار دوں گا, یا میں بھی اس کے ساتھ باتیں کروں گا, تو میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں؟ تو بہت تھوڑا انتقام ہے. لیکن ہاں اگر میں خود انتقام لے لوں تو اللہ پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ تو اس بات پہ یقین نہیں تھا میں تیرے پیچھے ہوں, اللہ والے فوراً خاموش ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام تو نے اپنے سپرد کیا ہے, مجھے کیا ضرورت ہے میں بولوں؟ تو پھر اس کے ساتھ جنگ ہوتی ہے اللہ کی, اللہ ہوا پر بڑی عجیب اور جنگ چلتی ہے. تو انہوں نے ایک فکر آگا, ایک فکر بھائی تو کمزور ہو کے, ہاں بادشاہ اتنا بڑا لیکن تو کمزور ہے, اس کے مقابلے تو کیا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ تو وہ تین چار قدم ہی چلا آگے, یہ فکر اس کے دماغ میں جب گونجا تو واپس پلٹا. پر کہتا ہے کہ درویش تو نے کچھ بات کہی تھی تو ڈرے نہیں؟ کہتا دل کھلا دے رہا. کہتا ہاں میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کو کیسے پایا جاتا ہے؟ उनके बैठ जाए फिर इधर ही। तो ये इतने बड़े दरवेश थे। तो वो क्या कहते हैं इस मजलिस के बारे में, जरा खुद सोचिए। उनकी बात आपको समझ पेश करता हूँ। ये जो आप जिक्र कर रहे हैं अल्लाह के, पहले मैंने उनका मुकाम बताया कि इन लोगों के नजरों में ये क्या मजलिस है जो आप बैठे हैं। और मैं हकीकत कहता हूँ कि आज भी आप किसी मस्जिद में बैठ कर जिक्र करते हैं ना, तो जब कोई नया आदमी आता है ना, तो चलते चलते एकदम उसको धक्का लगता है आपको देख, रुकता है मुझे देख के ना, फिर नफ्स होता है शैतान, चुप करके पिसास से आपको निकल जाता है। कभी आप तजर्बा कर लेना, क्योंकि हम तो चौराहे पे बैठे हैं ना, चौराहे पे हैं ना हम लोग, जहाँ सारी दुनिया आती है। हमारे पास हम तो उस मस्जिद में बैठते हैं या सारी दुनिया रंग के लोग आ रहे हैं आते जाते रहते हैं। तो कभी ये तमाशा आप देखना, अपनी आंखों से देख लेना कि जब आपकी मस्जिद बैठेगी ना, जिक्र का नूर और सुन्नत का नूर जब जागेगा ना, तो चलते चलते चाहे कोई भी हो एकदम उसको झटका लगेगा, आपको देखेगा, रुकेगा, अल्लाह की तरफ से पैगाम होगा, जा शामिल हो जा, नफ्स कहेगा भाग जाएगी तो बहुत बड़ी चीज़ है, मैं नहीं कर सकता। कोई आ जाता है, कोई निकल जाता है। तो इस मजलिस के बारे में अल्लाह कहते हैं कितनी ऊंची चीज़ है। फरमाते हैं कि भाई देखो, अजीब कौल है उनका, अल्लाह ताला अपने मोहब्बत करने वालों को, और ये इतनी बड़ी बशारत है आप लोगों के लिए, मेरे लिए, अल्लाह ताला अपने मोहब्बत करने वालों को उस वक्त जिक्र की तौफीक अता फरमाते हैं कि जिस वक्त सारी दुनिया गाफिल हुई होती है। दो मिशारतें मिलती हैं इसमें, जोर से कहना सुभानअल्लाह, कितनी बड़ी मिशारत मिली है कि अल्लाह, ये देखें अल्लाह वाला अपने मोहब्बत करने वालों को उस वक्त जिक्र के जिक्र इलाही की तौफीक अता फरमाते हैं कि जब दुनिया गफलतों में डूबी हुई होती है। अब देख लें आप कौन हुए आप, अल्लाह ने इस कॉल से साबित हो गया, गालिब बिल्ला थे, हदीस तो नहीं है लेकिन बड़ा ऊंचा कॉल है। कितना ऊंचा कॉल है कि भाई कि अल्लाह का जिक्र करने वाला है, अल्लाह ने कह दिया कि ये मुझसे मोहब्बत करने वाला है। ये हो ही नहीं सकता कि जिक्र करने वाला मुझसे मोहब्बत ना करता हो, आएगा ही वो जिक्र करने जिससे मुझसे मोहब्बत होगी। अल्लाह कि जिसके दिल में मेरी मोहब्बत का छींटा होगा वो कहीं नहीं जाएगा, सीधा कहां भागेगा, मजलिस से जिक्र के अंदर आकर उसको सुकून मिलेगा। जैसे कि मछली को पानी में मिलता है ना, वो भागता हुआ आएगा और जिक्र में बैठ जाएगा। पहली निशान दीजिए बताए अल्लाह ताला, सुभानअल्लाह, कितनी ऊंची बात बताई है। ये वाकई तुम उससे मोहब्बत करने वाले अल्लाह ताला कहते हैं। और दूसरी चीज ये मामूली चीज तो नहीं है कि मैं कितना बड़ा इनाम देता हूं उनको जो मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं, मैं छोटा इनाम उनको नहीं देता हूं, फिर नहीं देता हूं कि सारी दुनिया तो सोई हुई होती है, गफलत हूं मैं, गाफिल कलूब, अल्लाह हु अकबर। सबसे बड़ा अज़ाब अल्लाह ताला का यह है कि किसी का दिल गाफिल हो जाए, याद रखना, सबसे बड़ा अज़ाब अल्लाह ताला का, जल्जलों से भी और सैलाबों से भी और हादसा से भी सबसे बड़ा अज़ाब है कि किसी दिल को अल्लाह गाफिल कर दे, गफलत में डाल दे। तो फरमाया कि कितना बड़ा मैं इनाम देता हूं अपनी मोहब्बत को शख्स को कि मैं उसको अल्लाह का जिक्र दे देता, जिसको दुनिया को पता ही नहीं है क्या कर रहा है, क्या है, कौन से जिक्र की मजलिस, क्या कहाँ जा जिक्र करने जा रहा, जिक्र ही कर लो यार, अरे हम भी करते हैं, कुछ पता नहीं, गफलत में डूबी होती है। और जिक्र करने वाला अल्लाह की मोहब्बत होती है तो अल्लाह उसको नाम दे रहा है, वो भागा जा रहा था अल्लाह के जिक्र के अंदर, जाके बैठ जाता है, ना कोई कैफियात मिलती है उसको, ना कुछ मिलती है, क्योंकि अल्लाह ने हर चीज़ पर्दे में रखी है। अगर यहीं आपके सामने सब कुछ खोल दे और जन्नत में आपको बिठा दे, सब कुछ दे दे, तो मज़ा तो ना आया। मज़ा तो यही है सबसे बड़ी चीज़, इसमें एक नुक्ता बड़ा ऊंचा है, ये मज़ा अल्लाह ताला ये देखना चाहता है कि कौन मेरे महबूब की बातों पर यकीन करता है। अल्लाह को अपने महबूब से महबूब ही है ना, उतनी उसकी मोहब्बत है नबी पाकुम से, इतनी मोहब्बत है कि दूरी दुनिया को आजमा रहा है इस चीज़ पर कि जो लफ्ज मेरे महबूब की जबान से निकल जाए मैं देखता हूँ कौन इसको यकीन करता है। तो ये वो लोग हैं जो मेरे महबूब की बात पे यकीन करने वाले लोग हैं, जन्नत तो नहीं देखी। याद है आपको एक हदीस सुनाता हूँ मैं कि फरिश्ते जब जाते हैं तो अल्लाह ताला उनसे क्या पूछता है, जन्नत मांग रहे थे कि जन्नत देखी उन्होंने, कहते जी नहीं, किस चीज़ से पनाह मांग रहे थे, दोजख से, दोजख उन्होंने देखी, कहते नहीं। यहाँ वो नुकता निकलता है तो आखिर उनका यकीन कैसे बढ़ गया, फरमाया तेरे महबूब की जबान से जो निकला तुम्हें यकीन। इस हदीस का नुकता देखें आप कितना जबरदस्त है, मतलब जरूरत क्या जरूरत है पूछने की, यहाँ भी सरकारें तो उसकी शान को बुलंद देखें कितना की अल्लाह ताला ने कि ये सब बैठे हैं, ये गुलाम है मेरा, मेरे मेरा मेरे महबूब के सारे, उसकी जबान पे निकल इतना यकीन आ गया, उनके दिलों में कितनी मोहब्बत चली गई मेरे महबूब की, जाओ उनको मैंने बख्श दिया, नूर नूर हो गया उधर जिक्र, और जिक्र का कहना किसका, اس کی جو فضائل بتایا کس نے بتایا؟ اللہ کے حبیب نے بتایا. اس لفظ کرتے میری بات سمجھے پاتے ہیں؟ سمجھ گئے ہوں گے کہ کتنا خوبصورت اللہ کے حدیث سے نقطہ نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ کتنا پیار کرتے ہیں نبی پاک سے. نبی پاک سنتوں سے پیار کیا کرو میاں, اپنے سروں کو, اپنے چہروں کو, اپنے جسموں کو بالکل تصویر بنا دو سبھی نبی کے سمجھ کی, اللہ کی بے حساب بخشے چلے جاؤ گے. یاد رکھو یہ جی ہم نے لباس سے شکل صورت بنائی ہوئی ہے نا, یہ آخرت میں کام آئے گی, آخرت میں کام آئے گی. ڈالا تو ہمیں کفن میں جائے گا, یاد رکھیں کفن میں لپیٹ پھینک دیا جائے گا, لیکن الحمدللہ جس سے اٹھایا جائے گا میرا پورا یقین ہے کہ سنت والوں کو سنت کے لباس میں اٹھایا جائے گا. مخصوص کر دیا جائے گا کہ ان لوگوں کو زندہ کیا تھا انہیں, میرے حبیب کی سنتوں کو زندہ کیا تھا ان لوگوں نے, جب سب مردہ کر چکے تھے, جب سب ہنستے تھے تو یہ عمل کرتے تھے, جب سب تانے مارتے تھے تو یہ سلطانوں کو سہتے تھے, جب سب ان کے ساتھ مذاق کرتے تھے اس مذاق کو یہ برداشت کرتے تھے, جب سب لوگ ان پہ ہنستے تھے تو اس ہنسی کو برداشت کرتے تھے, جب سب ان کو ڈاؤن کرتے تھے, لیٹ ڈاؤن کرتے تھے, ان کو مصیبتوں میں ڈالتے تھے, وہ اس کو قبول کرتے تھے. تو آپ کو کوئی اس پہ کوئی صلاح نہیں ملے گا؟ اب نہیں, ابھی کچھ نہیں. یقین کو بڑھائیں کسی بات پر, یہ جب یقین کہاں بڑھے مارے, کس نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کالا کالا اس وقت تھا, بس ختم بات. یہ کس کو پسند تھی؟ انہوں نے کہا امامہ پسند, ختم بات, کوئی دلیل نہیں چاہیے ہم اس کے بعد. کس کو پسند فرمایا یہ سفید ہے کالا کالا, بس ختم بات, ہمیں دلیل چاہیے, پتہ جگڑے ختم. یقین آ گیا, بڑھ گیا یقین آسمان تک, ہم تب کچھ کریں گے الحمدللہ. بیٹھ کے کھانا کھاؤ, یہ کس نے کہا؟ سائنس نے کہا, ترقی ہوئی یا کچھ کے پیچھے جواز ہے, کوئی فائدہ ہے؟ نہیں جی, فائدہ فائدہ ہمیں کچھ کیا, کس نے کہا کالا کالا؟ وہ ختم جی بات, پورا دربار سجا ہوا ہے, شہنشاہ روم بیٹھا ہوا ہے, ایک گدڑی پوش صحابی چیتڑے لگے ہوئے ہیں, ہاتھ میں تلوار ہے, وہی ادب نہیں ان کو بادشاہوں کے پاس, تلوار کس طرح گھومتا جا رہا ہے اس کے اوپر کارپیٹ کے اوپر, اس طرح کرتا چلتا ہے. بیٹھ گئے ہدایات اس وقت, اور وہ بادشاہ روم اور ان کی سلطنت, ان کے بادشاہ اور ہیرے اور جواہرات اور ان کے اپنے محلات کے معاملات, وہ جا کے بیٹھ گئے. کھانا آیا, کھانا رکھا گیا, کھانا تناول فرمایا, اسی طرح انداز سے بیٹھے کھانے کے انداز سے, اسی انداز سے جی برداشت کیا انہوں نے. وہاں تو پروٹوکول تھا بادشاہ کا, وزیر بیٹھے ہوئے تھے, کرتے کیا پتا تھا, استفاتے ہیں اب ہم کیا کر سکتے ہیں, بس تلوار یہاں رکھی, بسم اللہ, پہلے ہاتھ دھوئے, ہاتھ دھونے کے بعد اللہ کو یاد کیا, بسم اللہ پڑھا, اس کے بعد تناول فرمایا, جی بھی برداشت کرتے رہے. کھاتے کھاتے اللہ نے ایک چیز دکھانی تھی نا, اور وہ ہاتھ سے نوالے کی کوئی چیز زمین پہ گری, جب گری تو اس کو اٹھایا, انہوں نے اٹھا کر پھونک ماری, سنت ہے نا, وہ بھی رکھا, تو پھر وہ بول پڑا, کہتا ہے یہ آداب کا خیال کریں, یہ تو شہنشاہ روم کا دربار ہے, آپ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ تو حقارت والی بات سمجھی جاتی ہے یہاں پہ. اس نے تو آستہ کا انہوں نے زور سے چیخا, تو کیسی بات کرتا ہے تو, اس کی وجہ سے میں اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ اس کی وجہ سے سنت کو چھوڑ دوں؟ نلائق ہو تم لوگ, کیوں اتنا یقین کیسے ہو گیا اس کو؟ کالا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو کیسے یقین ہو گیا؟ آپ باقتے ذکر میں آ گئے, کالا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی جا کے فرشتے گواہی دیں گی, جنت نہیں دیکھی, دوزخ نہیں دیکھی, ان کو جو آپ بتائے گی یہ نہیں دیکھا کہ بھائی باغ بن گیا جنت کا, یہ نہیں دیکھا کہ یہاں میوے کھا رہے ہیں, تو ان کو کیوں یقین آ گیا؟ کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوستو آخری ایک بات اور آپ کو سنا دیتا ہوں, مست کر کے پھر ذکر شروع کرتے ہیں. اللہ اکبر, عجیب چیز ہے, عجیب انعام بتا رہا ہوں آپ کو. آج میں رنگ میں آیا ہوں تو آپ کے ایک انعام اور بتاتا تھا, کبھی جمال ہوتا ہے کبھی جلال ہوتا ہے. ویسے وہ خون فاروقی ہے اس لیے معذرت چاہتا ہوں. تو کیا کر رہا تھا میں آپ کو سنا رہا تھا, بات کیا سنا رہا تھا؟ ہاں انعام ایک آخری دیتا ہوں. تو بھائی بات یہ ہے, عجیب غریب ایک حدیث ہے, اللہ اکبر, اچھی مجلس اور ذکر سے بڑی کوئی اچھی مجلس تو نہیں ہے. وہ تو میں نے سب آپ کو سمجھا دیا پہلے, یہ تو سمجھا گئی بات, کیوں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں تو کوئی اشتعال نہیں ہے. تو فرمایا کہ اچھی مجلس میں جب آدمی چلا جاتا ہے یہ اللہ پہنچا دیتا ہے. غور سے سننا میری بات, پھر کاؤنٹ کرنا اپنی باتوں کو, اور میرے لیے دعا کرنا کہ جب اللہ تعالیٰ اچھی مجلس میں کسی کو پہنچا دیتا ہے, تو اس مجلس کے صدقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ 200,000 غلط مجالس کو کفر ادا کر دیتا ہے. 200,000 جو غلط مجالس اس نے اٹینڈ کی ہوتی ہیں اس کا کفارہ ہو جاتا ہے اس ایک مجلس کے ساتھ. ہنس مزاح کی بات, ایک مجلس میں, اچھی مجلس میں انسان جب چلا جاتا ہے تو 200,000 غلط مجالس جو اس نے اٹینڈ کی ہوتی ہیں ساری زندگی میں کوئی اتنی نہیں کرتا, اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کا کفارہ کر دیتا ہے وہ مجلس. اب نکالیں اپنے کیلکولیٹر اور تقسیم کریں, ضرب دیں اس کو ان مجالس سے, کس کے ساتھ؟ رمضان کے ساتھ. کتنی مجالس ہو جائیں گی یہ, گنتے گنتے تھک جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم نے تو اتنی مجالس کی نہیں اور تو نے تعداد اتنی مجالس کی رکھ دی, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے جواب ضرور آئے گا کہ بھائی جو تو نے مجلس اٹینڈ کی تو وہ تو مائنس کر دی, باقی جتنی تیری مجلس ڈیو بنتی تھی وہ ساری نورانی مجلس بنا کر جنت میں داخل کر, انعام تو ضائع نہیں. اس مسجد کو ضائع نہ کیا کرو دوستو, میں نے تو وقت ضائع کیا اپنا. آپ نیک آدمی ہیں, اچھے آدمی ہیں, جہاں اللہ والے کی صحبت مل جائے, جہاں اللہ کا ذکر مل جائے, یہ نہیں کہہ رہا آپ اسی ذکر میں ہیں, ضرور ذکر میں بیٹھا کریں, اللہ کو یاد کیا کریں, اپنی زندگی کو بہتر کریں. رمضان کتنی تیزی سے چلا گیا دوستو دیکھیں, پتہ بھی نہیں چلا. اسی طرح وقت آئے گا کہ لوگ ہمارے نماز پڑھ رہے ہوں گے, ہم آگے لیٹے ہوں گے مردہ بیچ جسم, اور تھوڑی دیر کے بعد ہمیں زمین کے سپرد کر دیا جائے گا, زمین کے گھڑے میں. پھر یاد آئیں گی یہ مجالس ہیں, یہ باتیں, یہ چیزیں. غور سے میری باتیں سنا کریں اور میں بھی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کروں, آپ حضرات بھی کوشش کریں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.